भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 37 द्वितीय उवाच वरद यदि मे ब्रह्मण पुत्र इंद्रहनम वृणे अमृत्यम मृतपुत्र अहम येन मे घाति सुत वरद द्वितीय उवाच वरदो यदि मे ब्रह्मण पुत्रमेन्द्र हनम व्रणे अमृत्योमृत पुत्र अहम येन मे घाति सुत इति उवाच वरद यदि मे ब्रह्मण पुत्रमिंद्र हनम व्रणे अमृत्योमृत पुत्र अहम येन मे घाति सुत इति उवाच वरदो यदि मे ब्रह्मण पुत्रमिंद्र हनम व्रणे अमृत्योमृत पुत्र अहम येन मे घाति सुत इति उवाच वरद वरदान देने वाला यदि यदि मैं मुझको ब्रह्मना हे परम आत्मना पुत्रम पुत्र की इंद्रहनम इंद्र का वध करने वाला वृणे याचना करती हूँ अमृत्युम अमर मृत पुत्रा जिसके पुत्र मर चुके हैं अहम मैं ये न जिसके द्वारा मैं मेरे घातितो मारे गए सुतो दो पुत्र इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की दिति ने उत्तर दिया और आइए हे पतिदेव हे महात्मा मैं अपने दो पुत्र खो चुकी हूँ यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं ऐसा अमर पुत्र चाहूँगी जो इंद्र का वध कर सके मैं इसलिए ये प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दो पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का वध किया है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। इंद्र हनम का अर्थ है इंद्र को मारने में समर्थ, किंतु इसका एक दूसरा अर्थ जो इंद्र का अनुगमन करे भी होता है। अमृत्युम शब्द से देवताओं का बोध होता है जो दीर्घजीवी होने के कारण सामान्य मनुष्यों की भांति मरते नहीं। उदाहरणार्थ भगवान ब्रह्मा की आयु भगवद गीता में इस प्रकार बताई गई है सहस्त्र युग पर्यंतम अरिहत ब्राह्मणो विदो। ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे का समय 43,00,000 × 1,000 वर्ष होता है। इस प्रकार उसका जीवन काल मनुष्य की कल्पना से परे है, इसलिए देवताओं को कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है, किंतु इस भौतिक जगत में सबको मरना है, अतः अमृत्युम शब्द बताता है कि दिति ऐसा पुत्र चाहती थी जो देव तुल्य हो। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 35, अनुवाद पढ़ता हूं। हे सुंदर शरीर वाली तवंगी प्रिय, कल्याण चाहने वाली पत्नी को सदाचारिणी और पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। श्लोक संख्या 36। हे कल्याणी, तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करी है, अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, जो असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। इसके पहले आपने 33वां 34वां श्लोक किया है। 32वें श्लोक में कहा जा रहा है, कश्यप मुनि ने कहा, अनित्य सुंदरी, मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूं, अतः तुम चाहो तो जो भी वर मांग सकती हो। यदि पति प्रसन्न हो तो चाहे इस लोक की अन्य लोक की वे कौन सी इच्छा है जो पूरी न कर सके। पति ही स्त्रियों का परम देवता है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव सबों के हृदय में स्थित हैं और सकाम भक्तों द्वारा विभिन्न नामों तथा देव रूपों में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार पति भगवान के रूप में पत्नी के लिए पूजा की वस्तु है। अति सुंदर प्रकरण चल रहा है और आज का जो युग है उसमें इससे उल्टा हो रहा है। ऐसे क्या डेली हम अखबार में पढ़ते हैं, जगह जगह सुनते हैं, बातें करते हैं, तो जो लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है, उससे हमें रिवर्स ही मिलता है। उससे हम उसके अनुसार हमें आज के युग में नहीं मिलता। इसमें एक बड़ी सुंदर चर्चा आई है इन श्लोकों के अंदर कि मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूं। मतलब पति कह रहा है पत्नी से कि मैं तुम्हारे आचरण से परम प्रसन्न हूं। मीन्स ये शो करता है कि पत्नी जो है सबसे पहले उसको जब परिवार में रहती है, गृहस्थ में रहती है, तो उसके आचरण के कुछ नियम हैं। उन नियमों का पालन करेगी तभी तो पति प्रसन्न होगा। अगर वो पति को नौकर बना लेगी, जैसे कि आज के युग में होता है आमतौर पर देखा है, तो बड़ा सबसे प्रॉब्लम्स मिलती रहती हैं, तो क्या पति प्रसन्न होगा? सेवा मुख्य चीज क्या है, आचरण क्या है, आचरण मोटी चीज क्या आती है, एटीट्यूड, बिहेवियर, सेवा, पति के प्रति समर्पण, मतलब सब चीजें जो है, पति के रिश्तेदारों के प्रति क्या आदर मान सम्मान का भाव होना चाहिए, तो जिन चीजों से जो है पति प्रसन्न होता है। यहां पे पति किस तरह प्रसन्न हो रहा है, यहां पे जो कश्यप मुनि हैं वो किस तरीके से प्रसन्न हो रहे हैं? विनम्र आचरण से। इसका पहला श्लोक है, हे प्रिय, अपनी पति दिति के विनम्र आचरण से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम शक्तिशाली साधु पुरुष कश्यप हंस पड़े और इस प्रकार बोले। अब आती है बात जो आज हमारा 35वां श्लोक है, इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है कि हे सुंदर शरीर वाली तवंगी प्रिय, कल्याण चाहने वाली पत्नी को सदाचारिणी और पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। सदाचार, सदाचार का मतलब क्या है? सदाचार कहते हैं ना दुराचार या सदाचार। दुराचार का अर्थ क्या है? कि आपका आचरण जो है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। जो इंस्ट्रक्शंस महाभारत पढ़ेंगे ना, उसके अंदर जो है स्त्री धर्म की सारी व्याख्या की गई है, व्हाट आर द क्वालिटीज ए लेडी शुड इम्बाइब इन हरसेल्फ। जो शास्त्र के अनुसार एक पतिव्रता स्त्री का, एक विवाहित स्त्री का आचरण होना चाहिए, जो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए, अगर वो उनका पालन नहीं करती है, उसमें सबसे मुख्य रूल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश स्त्री के लिए सबसे मुख्य आचरण की वस्तु क्या है, सबसे मुख्य रोल उसके लिए क्या है, व्हाट इज इट। देखिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं धर्मपत्नी, धर्मपत्नी का अर्थ क्या है, पत्नी कहने से क्या बुराई है भाई, धर्म के साथ में लगा दिया भाई, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी धर्मपत्नी है। तो वो जो शब्द जो है उसको मॉडिफाई किया गया, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, उसके एक शब्द और जोड़ा गया कि धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का अर्थ क्या है, पत्नी कहने से काम नहीं चलता था क्या, पत्नी आपके मैसेज को दे रही है, शी इज माई वाइफ, ठीक है कि नहीं। परंतु जब धर्म शब्द साथ में इस्तेमाल होता है तो धर्म का अर्थ क्या निकला, धर्म पत्नी कहने का अर्थ क्या हुआ कि मेरी धर्म पत्नी है, धर्म से है, धर्म से मतलब कि एज पर इनमोरेटेड इन दी शास्त्र, जो शास्त्र के अंदर जो है धर्म की व्याख्या दी गई है उस धर्म के नियमों के अनुसार मैंने इसको पत्नी धारण किया अंडर दोज रूल्स एंड रेगुलेशन। वन, सेकेंड, ये मेरी वाइफ जो है ये मेरे को धर्म के मार्ग पर चलने में सहायता देती है, एंटी नहीं है। यहां आजकल क्या हो रहा है, आई कम अक्रॉस सो मेनी केसेस, बहुत सारे लोग आते हैं, प्रभु जी मैं तो मंदिर आना चाहती हूं, मंदिर आती भी हूं, पर मेरे पति मेरे को मंदिर नहीं आने देते, वो मंदिर नहीं आते, वो मेरे को गेट पे छोड़ के चले जाते हैं, फिर मैं उनको फोन मिस कॉल मारती हूं, फिर मुझे आके गेट पे से ले जाते हैं, अंदर नहीं आते। दिस इज ए कॉमन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। मैंने दसियों जगह लेक्चर दिए हैं और दसियों जगह पे मतलब कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई परिवार ऐसा निकलता है जहां पर कि जो है पत्नी धर्म पे क्या चलने में सहायता करेगी, पति पत्नी को धर्म पे चलने में सहायता नहीं करता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे की सहायता नहीं करते। जब हम धर्म पत्नी इस्तेमाल करते हैं शब्द को तो इसका अर्थ यह है कि वो पत्नी जो है धर्म के यम नियमों के अनुसार उसकी पत्नी बनी है, नंबर एक, और नंबर दो उसको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन और सहायता देती है, उसको पीछे नहीं हटने देती और स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलती है। धर्म का मार्ग क्या है, अब सिंपल सी बात करें कि कौन से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, कौन सा मार्ग है जिसको धर्म का मार्ग कहा जाता है। तो धर्म का जो है शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य, और धारण करने योग्य क्या है, क्या वस्तु धारण करने योग्य है, धर्म क्या धारण करने योग्य क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस चीज को धारण करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो धारण करने योग्य है वो ये है कि मैं भगवान के साथ जो मेरा संबंध भूला हुआ था उसको रिवाइव करना, उसको डिस्कवर करना, नंबर एक, और नंबर दो उस भगवान का प्रेम प्राप्त करना। मतलब प्रेम प्राप्त करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो एफर्ट्स मुझे करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है धारण करने। मनुष्य जीवन जो मिला है इसी कार्य के लिए मिला, बाकी सब चीजें ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, एसेंशियल्स हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, जो लक्ष्य है वो ये है कि अपना जो है कृष्ण प्रेम उसको रिवाइव करना और प्राप्त करना। क्या होगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, कि जब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा भगवान के घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मीन्स गोइंग बैक टू गॉड हेड, भगवान के घर में जाने के लिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना अति आवश्यक है, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही धर्म है। वो प्रेम कैसे प्राप्त होता है, सेवा के द्वारा। सो भगवान की सेवा करना ही धर्म है। अगर हमसे वो पूछता है कि आपका धर्म क्या है, तो माई रिलीजन, माई धर्म इज लव ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ गॉड। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फेथ है सब, इस तरीके से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो पत्नी जो है पति को धर्म के मार्ग पर चलने में सहायता देती है, प्रोत्साहन देती है, उसको सपोर्ट करती है और खुद भी धर्म के मार्ग पर चलती है। तो उसके लिए जो एसेंशियल रूल्स हैं उनमें एक है सदाचार का पालन करना। जैसे हम लोग कहते हैं कि अब वैष्णव बने हैं तो वैष्णव आचरण होना चाहिए। जब हम जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं, हम वैष्णव कहलाते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें वैष्णव जो आचरण है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वैष्णव के लिए दिए गए हैं, हमें उनका पालन करना है। तो पत्नी को सदाचारिणी होना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो शास्त्रों में दिए गए हैं किसी भी स्त्री को पत्नी बनकर धर्म को निभाने के लिए, उनका पालन उसे करना चाहिए। शी शुड स्टिक टू इट, उसे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उससे आउट नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट क्या बताया कि पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। अब इस आज्ञा के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि पति मुझसे गलत कार्य करने को बोलता है तो क्या मैं उस आज्ञा का भी पालन करूं? ही सेज समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट शास्त्र, शास्त्र के खिलाफ कहता है, एक ऐसा कार्य मुझे करने के लिए कहता है जो कि शास्त्र के अनुरूप नहीं है, तो शैल ही फॉलो इट? इसीलिए सदाचारिणी शब्द साथ में इस्तेमाल किया गया कि आज्ञा भी जो है सदाचार के अनुकूल होनी चाहिए। आपको जो शास्त्रोक्त आज्ञा है, जो शास्त्र के अनुसार आज्ञा है, आप सदाचार का पालन कर रही हैं और पति कैसा होना चाहिए उसकी क्वालिटीज हैं, उसके गुण हैं। जैसे स्त्री का धर्म है ऐसे पति का भी धर्म है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो इट। पति भी वैसा ही होना चाहिए, समझे? नहीं तो अगर जो है स्त्री जो है पति की आज्ञाकारिणी है, अब यहां पति कौन है? छोटी मोटी हस्ती हैं क्या? शास्त्र के अगेंस्ट कार्य करने वाले हैं क्या? ऐसा है जो शास्त्र के विरुद्ध आज्ञा देंगे? मतलब पति की भी क्वालिटी जो है वे करती है, उसका भी वजन है, उसकी भी एक सिस्टम है कि पति के लिए भी गुण होने चाहिए, और पति के लिए अगर जो है प्रॉपर शास्त्रोक्त गुण है उसके अंदर, शास्त्र के अनुसार चलता है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण भाव नामृत में है, कृष्णा कॉन्शियस है, भगवान को अपना सर्वस्व मानता है, भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसे पति की आज्ञा का पालन करना पति पत्नी के लिए असेंशियल है। बट आज्ञा जो है वो शास्त्रोक्त होनी चाहिए। पति ने कहा हम लोग जो है तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया है इसको गिरा दो, आई डोंट वॉन्ट टू हैव ए चाइल्ड। अब पत्नी यहां पे रिफ्यूट करती कि शास्त्र के विरुद्ध है, मैं नहीं करूंगी ऐसे। तो हम कहें जी पति की आज्ञा का तो पालन नहीं किया। तो दो कंडीशंस अगर रखी जाए तो इसमें से पत्नी को कौन सी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार वाली या शास्त्र के विरुद्ध वाली? जो आज्ञा शास्त्र के अनुसार है, समझाना, आपस में एक दूसरे से चर्चा करनी, समझाना, पति को मोटिवेट करना, गलत कार्य कर रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह, सारा जो है धर्म पत्नी का कर्तव्य है, उसको सही मार्ग पे चलाना, उसको सही मार्ग पे लेके आना। कि धर्म के मार्ग पे चलाने के लिए पत्नी जो है धर्म पत्नी कहलाती। अब यहां पर जो है इसके बाद कहते हैं उसे अपने पति की पूजा वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। पति की पूजा करनी है, इसका क्या मतलब? रोज सवेरे शाम उसकी तीन बार आरती उतारें? आज के युग की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट सिनेरियो, तो आज का सिनेरियो है, मैं आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूं, टुडे इन करंट सर्कमस्टांसेस व्हाट शुड शी डू? आप बैठ जाओ जी सामने तैयार होके, मैं सुबह आरती उतारूंगी, दोपहर में आरती उतारूंगी, शाम को आरती उतारूंगी। पति कहे मेरे को ऑफिस से टाइम ही नहीं है, मैं तो ऑफिस में बैठा हूं, हैं सवेरे मैं 7 बजे चले जाता हूं, उसके बाद मैं रात में 10 बजे घर आता हूं, और तुम 3 बार मेरी आरती उतारोगी, पूजा कर रही हो, और वैसे लड़ रही है पर आरती 3 बार उतार रही है, इज इट जस्टिफाइड? आज के युग के अंदर पति की पूजा का अर्थ यह है कि पति के साथ मिलजुल कर सहयोग कर एक दूसरे के साथ जो है आपको पति की सेवा में संलग्न होना चाहिए, उसके शास्त्र अनुसार जो अनुरोध हैं, ऑर्डर्स हैं, उनका पालन करना चाहिए और पति को धर्म के मार्ग पर चलने पर सहयोग देना चाहिए। अगर जो है पति जो है उसको आप ऑनर देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, तो जो उसकी जस्टिफाइड लॉफुल इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलने अर्थात कृष्ण भावनावृत के मार्ग पर चलने के लिए पति का सहयोग देना चाहिए। मेरे पास ऐसे भी केस हैं जहां पति तो कृष्णा कॉन्शियस है और पत्नी जो है वो मटीरियल कॉन्शियस है, यहीं पर हैं, इसी जगह पर। आई हैव मेट सो मैनी पीपल, पत्नी बिल्कुल सहयोग नहीं करती, बहुत परेशान है पति, भोग लगाने को नहीं कहती, भोग काहे का लगाना, भगवान तो सबके मन के अंदर है, तो खा लिया तो उनको ऑटोमेटिकली भोग लग गया, तुम काहे अपना भोग लगाने के चक्कर में पड़े हुए। बड़ी सिंपल फिलॉसफी देती है, आपके दिल आपके हृदय में भगवान है ना, जब आपने खा लिया तो भगवान ने खा लिया, तो उसमें भोग लगाने की ये नाटक करने की क्या जरूरत है, खा लो बनाओ और खा लो। पति समझा समझा के हार गया, समझा नहीं मानने वाली, नहीं सुनने वाली, नहीं सही बात मानती, कहते मेरे गुरुजी ने ये बताया है, हमने तो भगवान को निकट से देख लिया, तुम तो अभी सिर्फ मूर्तियां देखते हो। लिटरली दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, लिटरली पीपल हैव डिस्कस्ड विद मी दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, तुम तो मूर्तियों के चक्कर में पड़े हो, हमने तो भगवान को देख लिया है, हम तो भगवान के निकट है एकदम, तुम तो हमसे बहुत पीछे हो, माला जपते रहते हो और भगवान को भोग लगाते रहते हैं, हम तो बहुत एडवांस्ड हैं और कुछ नहीं करती। तो यहां पर जो है पत्नी के लिए बताया गया है सदाचारिणी होना चाहिए, नंबर एक पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए। अब इसके अगले श्लोक में कहते हैं हे कल्याणी, तुमने मुझे श्री भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करिए, पूजा मीन सेवा करिए, सर्वड में अतः मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करके तुम्हें पुरस्कृत करूंगा जो किसी भी असती पत्नी के लिए दुर्लभ है। मतलब पत्नी को सती होना चाहिए। अब सती की क्वालिटी क्या है, आमतौर पर हम लोग सती शब्द का जो इस्तेमाल आज के युग में करते हैं वो क्या है, पति मरे तो साथ में सती हो जाओ, ऐसे ही कहते हैं ना कि पति की डेथ हुई तो तुम भी चिता पे कूद जाओ, यू शुड डाई अलोंग विद हिम। सती शब्द का आज की तारीख में ये इस्तेमाल किया जाता, पर यहां जो है किसी भी असती पत्नी के लिए, सती मीन्स वन हु इज 100% सरेंडर टू हर हस्बैंड, primarily to Lord Krishna, secondarily to husband. मतलब उसे अपने husband के बाहर कोई भी relationship maintain नहीं करना, she should be faithful to her husband, अपने पति के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। और तुमने मुझे भगवान का प्रतिनिधि मानकर, जो कहते हैं ना पति परमेश्वर है, कहते तो हैं आज की डेट में पति परमेश्वर है, ना पति को परमेश्वर मानते हैं ना पति परमेश्वर होता ही है, तो उसमें गुण ही नहीं होते परमेश्वर वाले, कुछ तो हो सच्चिदानंद है, कुछ तो गुण दिखाए अपने, गुण नहीं दिखाते। तो यहां पर चर्चा हो रही है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पुरस्कृत करूंगा, कब कंडीशंस अप्लाई, कंडीशन क्या अप्लाई करी थी कि तुमने मुझे भगवान का प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करी। ये शब्द इस्तेमाल किया है भक्ति पूर्वक, वाई कि तुमने मेरी सेवा करी है, क्या ये एनफ नहीं था भाई, तुमने मेरी सेवा करी है। यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तुमने मुझे प्रतिनिधि मानकर अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करी है। व्हाट डज दैट सिग्निफाई, भक्ति पूर्वक शब्द को इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी, केवल सेवा करने कह के जो है काम नहीं चलता था क्या, रीजन कि सेवा जो है वो मजबूरी में भी होती है, सेवा तो हो रही है बट अंडर कंपल्शन, और दूसरी सेवा हो रही है विद प्रेम। प्रभुपादी शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, डिवोशनल सर्विस विद लव। डिवोशनल सर्विस कहने से भी काम चलता था पर लव कहने से उसकी सिग्निफिकेंस बदल जाती, चेंज हो जाती है, उसका मर्म चेंज हो जाता है, उसका भाव बदल जाता है, उसका जिस्ट बदल जाता है। डिवोशनल सर्विस विद लव, जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं फिर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे भगवान की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, भगवान के लिए भोग बनाना मजबूरी में भी होता है, कई बार बनाना ही पड़ेगा, प्रभु जी ने कहा था भगवान को भोग लगाए बगैर खाना नहीं है, तो टाइम है नहीं मेरे पास, समय है नहीं, 10-4 मेहमान आने वाले हैं, सारा घर मेंटेन करना है, ऊपर से अब कुछ चखना नहीं है, स्वाद नहीं देखना है, भगवान को भोग लगाना है फिर खिलाना है, बड़ी मजबूरी है। मतलब बन तो रहा है, तैयार हो रहा है बट अंडर कंपल्शन हो रहा है, भक्तिपूर्वक नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन में गिवन एनी सर्कमस्टांसेस, कैसी भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, भोग बन रहा है तो उस वक्त भगवान ही मन में समाए कि भगवान के लिए बन रहा, हा हा क्या मजा आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है, भगवान के लिए बनाने में एक आनंद की अनुभूति हो रही है, दैट इज भक्तिपूर्वक। इसी तरह जो है पत्नी जो है पति के आदेश का पालन करती है, उसकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करती है, तो एक प्रेम पूर्वक करती है, एक अंडर कंपल्शन करती है। यहां कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा क्योंकि तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है। अब आती है चर्चा, दिति ने उत्तर दिया है, पतिदेव हे महात्मा, अपने दो पुत्र खो चुके हूं, यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो मैं एक ऐसा अमर पुत्र चाहूंगी जो इंद्र का वध कर सके। मैं इसलिए प्रार्थना कर रही हूं क्योंकि इंद्र ने विष्णु की सहायता से मेरे दो पुत्रों हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु का वध किया है। यहां पर चर्चा आ रही है टाइम की, कि टाइम स्लॉट जो है उसको ब्रह्मा जी का जो है आयु की चर्चा आ रही है, तो आयु की जो कैलकुलेशन है टाइम की वो कैलकुलेशन कैसे है। शॉर्टेस्ट जो टाइम का मेजरमेंट है, जो काल विभाजन कहते हैं, शॉर्टेस्ट क्या, सबसे छोटी चीज क्या है, सबसे छोटी है लव, लव से ऊपर, लव से नीचे अनु, अनु से नीचे, तो सबसे छोटा क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ परमाणु। दो परमाणु मिलके एक अणु बनता है, दिस इज द सिस्टम। दो परमाणु मिलकर एक अणु बनता है, तीन अणु मिलके एक त्रसरेणु बनता है। त्रसरेणु क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि जैसे शास्त्र में लिखा है कि जब आप रोशनी को देखते हैं ना खिड़की में से आती हुई, उसमें आपको जो है कुछ हवा में उड़ती हुई चीजें सी दिखाई देती हैं, गवाक्ष, तो गवाक्ष बोलते हैं खिड़की को, गवाक्ष अक्ष आंख की तरह होता है ना अक्ष, तो गवाक्ष जो है वो कमरे की आंख है, मतलब खिड़की जो है ऊपर से रोशनी का जो रोशनदान है, वहां से जब रोशनी अंदर आती है तो उसमें से जो रोशनी में दिखाई देता है वो जो है त्रसरेणु कहलाता है। तीन त्रसरेणु मिलकर बनती है एक त्रुटि, एक त्रुटि का बहुत छोटा छोटा है, इतना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। 100 त्रुटि का मिलकर बनती है एक वेधा, और 3 वेधा मिलकर बनती है एक लव। तो लव से भी कितना छोटा मेजरमेंट है शास्त्र के अंदर। 3 लव मिलकर बनता है एक निमेश, 3 निमेश से बनता है एक क्षण, एक क्षण। और क्षण की परिभाषा क्या दी गई है, क्षण का साइज क्या बताया गया है, साधारण भाषा में जब बात करते हैं तो कहते हैं अगर आप कमल के पत्ते को सुई से वेधें तो कमल के पत्ते को जब सुई छूती है तो एक क्षण हो जाता है, सुई उसमें ट्रैवर्स करती है दूसरा क्षण हो जाता है, और सुई बाहर निकलती है तो तीसरा क्षण हो जाता है। इट इज सो स्मॉल. ये सुविधा, ये मैनेजमेंट हमारे शास्त्र में है, आज की साइंस में नहीं है. हमने इंजीनियरिंग कर ली, हमने डॉक्टरी कर ली, हमने बहुत कुछ कर लिया, अभी यहां तक नहीं पहुंच पाए. इट इज सो स्मॉल. पांच क्षण मिलके एक काष्ठा बनती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु की एक नाडिका होती है, 6 नाडिका का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर का एक दिन और रात होता है, 15 दिन और रात का एक पक्ष, 15 दिन का या 15 दिन रात का मिला के एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, 2 मास की एक ऋतु होती है, और 6 महीने का एक अयन होता है, 2 अयनों का एक वर्ष होता है. दक्षिणायन उत्तरायन, 2 अयन, 2 अयन होते हैं उनका, जो है एक वर्ष होता है. ये जो एक वर्ष है, ये देवताओं का एक दिन और रात है. जो हमारा एक साल 2013, मतलब देवताओं का 24 आवर्स हुआ है, 2012 देवताओं के 24 आवर्स. इतनी छोटी जो है हमारे पास काल की गणना है, शास्त्रों में अवेलेबल, काल विभाजन कहते हैं इसे. अब कलयुग के अंदर है 4,32,000 साल. अब कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करिएगा कि इस कलयुग के 4,32,000 साल में कितने परमाणु हैं. कैलकुलेट, कैलकुलेटर में ना ई डाल के ना एक आगे फिर वो एरर आना शुरू हो जाता है, इसके आगे हम नहीं कर सकते, सॉरी रिस्पॉन्स इज नॉट अवेलेबल, आएगा ही नहीं. द्वापर युग में इससे दुगुना 8,64,000, त्रेता युग में इससे 3 गुना 12,96,000 साल, सतयुग में इससे 4 गुना 17,28,000 साल, तो एक चतुर्युगी में हो गया 43,20,000 साल, समथिंग लाइक दिस. 71 सही 1/14 चतुर्युगी होती हैं तो एक मनु का काल आता है, एक ममंतर आता है, 14 ममंतर है, 14 मनु है. 1,000 चतुर्युगी में ब्रह्मा जी का एक दिन है, 1,000 चतुर्युगी में ब्रह्मा जी की एक रात है, और ब्रह्मा जी का अहोरात्र जो है वो दोनों को मिला के अर्थात 24 घंटे ब्रह्मा जी का अहोरात्र कहलाता है, और ब्रह्मा जी का एक महीना जो है उसके बाद एक साल और उसके बाद 100 साल, इसकी जीरो नहीं काउंट होती. 311 trillion ईयर्स, ऐसे कुछ, ऐसा समथिंग लाइक दिस कम्स आउट. इतनी लंबी है आयु ब्रह्मा जी की. अब हम बात करते हैं कि जब परिवार चलाते हैं, गृहस्थ चलाते हैं, तो हमारी आयु क्या है, व्हाट इज अवर लाइफ, और हम उसे कैसे पास करते हैं, कैसे हम चलाते हैं उसको. आज की डेट में अब एवरेज लेके चलिए तो क्या आयु लेके चलें, 100 साल कितने लोग जीते हैं, अखबार में खबर आती है 100 ईयर्स, मतलब एक बड़ा रेयर कॉमोडिटी है, रेयर मतलब रनिंग चीज नहीं है, बड़ा रेयर सा है, 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब उसको तरीके से एक जो है मेडल तमगा दिया जाता है कि 100 साल का हो गया, ये 103 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, इट इज अ वेरी रेयर थिंग. एवरेज गिना जाती है 70 साल की, 70, 2-4-5 साल कम, 2-4-5 साल ज्यादा, ये एवरेज लेके चलिएगा 70 साल की. 70 साल की एवरेज के अंदर जो है अगर आप लेके चलेंगे तो कितने दिन बैठते हैं, हाउ मेनी डेज, पच्चीस हजार 500 दिन. बिल्कुल सही बताया प्रभु जी, ताली बजा दो इनके लिए. कैलकुलेट करके रखा हुआ था 70 साल ऑन द स्पॉट मेंटल कैलकुलेशन किया फटाफट मल्टीप्लीकेशन करके. डेली रूटीन हमारा जो है वो एवरेज 2 घंटे लेता है, मतलब 2 घंटे के हिसाब से 2,129 दिन हम जो है वो एवरेज रूटीन में बिता देते हैं. डेढ़ घंटा हम कहते हैं प्रसाद पाने के लिए, आधा पौना घंटा सुबह इतना लग ही जाता है, हाथ धोना, बैठना, पाना, फिर हाथ धोना, पौने घंटे का टाइम लेके चले तो दो टाइम का जो है डेढ़ घंटा 1597 दिन बनते हैं। जॉब के लिए आना जाना एक घंटा सुबह एक घंटा शाम, वैसे तो नोएडा जाना हो तो ढाई घंटे लग जाते हैं आने में, रात शाम को, सवेरे जाने में दो घंटे लग जाते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है, पर दो घंटे लेके चल रहे हैं टोटल, फिर भी 3129 दिन काम करना है 8 घंटे। कॉरपोरेट्स में आजकल काम 8 घंटे होता है, कितने घंटे होता है? 14 घंटे। घर में भी लैपटॉप लेके बैठे हुए, उसके बिना काम नहीं चल रहा भाई, काम तो करना ही पड़ेगा, पर 8 घंटे लेके चलें तो आपका जो है 2,04,440 घंटे बनता है, अर्थात 8,516 दिन बन गए। पर्सनल डिस्क्रिशन कि मुझे अपने लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं गपशप लगा सकूं, प्रजल्प कर सकूं, बाएं दाएं थोड़ा सा नुक्कड़ पे खड़े होके फोन पे दोस्तों से चैटिंग कर सकूं वगैरह 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 करके, तो डेढ़ घंटा रोज लगा के चलेंगे। फिर 1597 दिन है, मिसलेनियस एक घंटा, घर में वो आ गया, हम किसी के घर चले गए वगैरह वगैरह वगैरह, चैटिंग हो गई, 1064। और उसके बाद 8 घंटे अगर रोज का सोना है तो 8,516, मतलब 24 घंटे बीत गए, तो भजन करने का टाइम आ गया। वेयर इज द टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस? समय कहां है? बिल्कुल एक्यूरेटली चल रहा, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है, बाकी 8 घंटे बीत गए, है कहीं टाइम? भगवान के लिए भोग बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, प्रचल्प न करके चर्चा भगवान की करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, माला जपें वगैरह वगैरह, जितने भी ये कार्य हैं हमारे पास जो हमें भगवान की भक्ति के लिए करने चाहिए, अपने आप को उठाने के लिए करने चाहिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करने चाहिए, उन कामों के लिए समय कहां है? वेयर इज द टाइम? 70 साल का समय हमने जो है बिता दिया है या तो सोने में, 24 घंटे में से 8 घंटे सोने का मतलब है 1/3 ऑफ योर लाइफ यू आर स्लीपिंग। 24 घंटे में से 8 घंटे गए तो कितना हुआ? 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? अपने जीवन का तिहाई समय तो आपने सोने में व्यतीत कर दिया। और अगर ऑफिस जाने और ऑफिस से आने का टाइम लगाया जाए तो 12 घंटे अर्थात आधा जीवन आपने जो है काम में व्यतीत कर दिया है, बाकी तो आपके पास समय बचा ही नहीं है। अब कैसे समय इस्तेमाल करना चाहिए? व्हाट शुड बी योर रूटीन? प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है ना, तो मेरे 70 साल का जो समय है जीवन का, उसमें पहले 5 साल तो 7 साल तो निकल गए, ऐसी होश ही नहीं होती, बच्चा है छोटा सो पता ही नहीं होता, वो सिर्फ कंप्यूटर गेम देखता है, टीवी गेम देखता है, 3 साल की उम्र में चश्मा लगा लेता है। अब आजमा के देख लो, आज की डेट के अंदर 3-3 साल के बच्चों के चश्मे लगे हुए, रीजन क्या है? कि उन्हें टीवी की एडवर्टाइजमेंट बहुत भाती है, छोटा भीम बड़ा अच्छा लगता है, उसमें आती है ना एनिमेटेड मूवी, वो उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, कार्टून नेटवर्क बड़ा अच्छा लगता है छोटेपन से, तो क्या है 3 साल की उम्र में चश्मा लग जाता, नो अल्टरनेटिव। होना क्या चाहिए हम लोगों का कि डेली रूटीन जो हमारी है वो हम लेके चलते हैं 6 घंटे, कम्यूट करना है, नहाना धोना, प्रसाद पाना, डेली एक्टिविटीज जो है हमारी, जो पर्सनल डिस्क्रिप्शन जो भी है, हम उसको 6 घंटे लेके चलते हैं, और 6 घंटे हमें ऑफिस में कार्य करना चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। तो ये 6 घंटे और पहले वाले 6 घंटे मिला के 12 घंटे में हमें ये दोनों कार्य करने हैं, चाहे ऑफिस चलाएं चाहे डेली रूटीन चलाएं, एंड स्लीप शुड बी कटेल टू 6 आवर्स। तो हम 6 घंटे बचाते हैं जो भक्ति के लिए है, चैंटिंग के लिए है, बुक रीडिंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हियरिंग है, डीटी वर्शिप है, प्रचार है, प्रीचिंग एक्टिविटीज है, वो 6 घंटे हमें उसमें व्यतीत करने चाहिए, जो कि हम ऑनेस्टली एंड सिंसियरली नहीं करते, कंपल्शन में करते हैं, बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कार्य करते हैं। तो वक्त जो है, समय जो है, उसकी बहुत महिमा है, उसके लिए हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। देवताओं को भी कभी कभी अमर अर्थात न मरने वाला कहा जाता है। जब अमरत्व की बात करते हैं, इस श्लोक में खास तौर पे जो है अमरत्व की बात आई है, तो अमर होने का अर्थ जो है यहां पर प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं दीर्घजीवी होना। ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, है क्या? 100 साल की आयु बताई ना उनकी। तो कश्यप मुनि अब परेशान होंगे कि मुझे मैंने वचन तो दे दिया है परंतु जो अमृत्व वाली बात है वो कैसे होगी, तो बड़ा मुश्किल कार्य कर दिया। वे लड़ किससे रहे हैं, किसके अगेंस्ट हैं? हूज इंद्र? एक आदित्य है ना, वो भी आदित्य का पुत्र है। तो अल्टीमेटली तो देवासुर संग्राम जो हुए हैं, जो देवता और दैत्यों के युद्ध हुए हैं, बेसिकली तो भाइयों के अंदर है ना, पत्नियां दो हैं, पिता तो एक ही है। अब अमृत की जो प्राप्ति हुई कैसे हुई वो? हाउ? समुद्र का मंथन किया। कब किया, कब हुआ? छठे मन्वंतर की चर्चा है, भागवतम का 8वां स्कंद पढ़ेंगे जब तो आपको उसके अंदर सारा उल्लेख आएगा कि भगवान जो है वैराज ऋषि और संभूति के गर्भ से अजित भगवान ने जो है प्रकट किया, अपना अंशावतार कहलाते हैं, अमृत मंथन हुआ है और उस अमृत मंथन के अंदर से 10 चीजें बाहर आई। भगवान ने बड़ी चाल खेली यहां पे। एक छोटी सी कहानी जो है उससे बात समझ में आती है कि एक बार जो है एक पिटारे के अंदर जो है छोटा सा चूहा और एक सांप फंस गया। अब सांप को तो लकड़ी काटनी आती नहीं थी, बाहर कैसे निकला जाएगा, चूहे को आती थी, चूहा लकड़ी काट लेता दांतों से, उसके दांत होते। तो सांप को जो है मतलब सांप ने जो है चूहे को दोस्त बनाया, खाया नहीं, चूहे को मस्का पालिश लगा के उसको दोस्त बनाया, उससे कहा देखो ठीक है हम दोनों दुश्मन थे परंतु आज हम दोनों फंसे हुए हैं, आज हम दोनों मित्र हैं, हम आपस में मित्रता का कार्य करते हैं, हमें एक दूसरे के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह करके, और उसको पटा के चूहे से जो है उसने छेद को करवा लिया लकड़ी के अंदर। तो उसने देखा कि सूटेबल छेद बन गया है तो चूहे को खा के छेद से बाहर निकल गया आउट। तो दिस इज, ये राजनीति तब भी थी। तो यहां पर जो है भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो है असुरों को मित्र बनाना चाहिए। देवता श्रीहीन हो गए हैं, श्रीहीन छठे मन्वंतर के अंदर श्रीहीन कैसे हुए, किस तरह से हुए? छठे मन्वंतर की बात है, ये जो पीछे पढ़ के आए हो ना, इसकी बृहस्पति वाली बात है वो नहीं। हाँ इज राइट कि दुर्वासा मुनि जो है वैकुंठ में भगवान से मिलके आ रहे थे, उनके पास जो है भगवान की एक चरणों की माला थी, वो माला उन्होंने जो है, इंद्र जो है अपने लाव लश्कर के साथ ऐरावत में बैठा जा रहा था तो उन्होंने माला जो है वो इंद्र को दी। इंद्र जो है गर्भ से उन्मत्त था, उसने कुछ नहीं समझा उसको, और माला को जो है अपने गले में धारण न करके ऐरावत के ऊपर डाल दिया। ऐरावत ने यूं झटका, माला नीचे गिराई, पैरों से रौंद डाली। तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम तीनों लोक के स्वामी हो, तीनों लोक से हीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ। अब उसके बाद जो है राज्य हो गया दैत्यों का, सब छिन गया उनसे। तो छिन गया है तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर वो जो है ब्रह्मा जी पे गए, शिव जी को साथ देके, भगवान विष्णु पे गए, फिर सारी उन्होंने प्लानिंग समझाई। लंबी स्टोरी है, पढ़ोगे तो कई सारे चैप्टर थे अमृत मंथन के अंदर। तो अमृत मंथन हुआ है तो अमृत मंथन में जो है भगवान ने भी जो चाल चली है वहां पर, वासुकी नाग के मुख की तरफ भगवान ने देवताओं को खड़ा कर दिया। कहां खड़े थे? तो प्रभु जी कह रहे हैं गलत है, गलत है ना। मैंने चाल का शब्द इस्तेमाल किया पहले, उन्होंने चाल में ध्यान नहीं दिया। भागवत तो बड़ी है, पहले उन्होंने जो है खड़ा कर दिया और फिर दैत्यों को लगा कि इन्होंने तो अपनी मर्जी से पहले सिलेक्शन कर लिया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन, भगवान कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, ओवररूल नहीं, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। ठीक है भाई, तुम मुख वाली साइड इनको दे दो, तुम लोग पूंछ की तरफ आ जाओ, चलो देवताओं को पूंछ की तरफ खड़ा करो। अमृत मंथन के अंदर भगवान ने जो है सतोगुण के रूप में देवताओं में प्रवेश किया है, रजोगुण के रूप में दैत्यों में, और तमोगुण के रूप में वासुकी नाग में प्रवेश किया है। और मंथन के अंदर जब देवता और दैत्य दोनों थक गए हैं तो भगवान ने स्वयं मंथन किया है। और जब मंदराचल डूब रहा था तो किसके सहारा बेस क्या बनेगा, तो भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, मेरी पीठ के ऊपर आप करिए। उस अमृत मंथन के अंदर से 10 चीजें बाहर आई। कालकूट विष शिवजी ने धारण किया, नीलकंठ कहलाए। कामधेनु ब्रह्मवादी ऋषि ले गए सारी। उच्चेश्वरा घोड़ा बलि महाराज ने लिया, ऐरावत इंद्र ने लिया, कौस्तुमणि जो है भगवान विष्णु ने धारण करी। कल्पवृक्ष स्वर्गलोक चला गया, अप्सराएं स्वर्गलोक चली गई, लक्ष्मी जी विष्णु जी को मिल गई, वारुणी को दैत्य ले गए, अब अल्टीमेटली आए धन्वंतरी विद लॉट ऑफ आयुर्वेदा एंड वनस्पतिज एंड सो कलश ली के हाथ में, विशाल पुरुष, लंबी लंबी बाहें। अब उनके पास आते ही दैत्यों ने उसको छीन लिया, कब्जा कर लिया। अब देवता परेशान है, अगर इसको ये पी के अमर हो गए तो पहले ही हम बड़े परेशान हैं, श्रीहीन हो रहे हैं, इनसे दुखी हो रहे हैं, फिर तो मामला ही सारा सटक जाएगा। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी, एक चाल और चलेंगे, मैं मोहिनी रूप धारण करूंगा। और भगवान ने जो है मोहिनी रूप धारण करके कंडीशन रख दी, एक दैत्यों को सम्मोहित करके एक कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रखी, कि मैं अमृत का वितरण करूंगी परंतु जैसा भी करूंगी तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और चूंकि ऐसा मोह लिया है दैत्यों को, दैत्यों ने कहा नहीं नहीं हमें काहे का ऑब्जेक्शन है, जैसा मर्जी करो ना, आपकी पूरी फुल पावर है, फुल लिबर्टी है आपको। परंतु राहु ने गड़बड़ करी है, राहु का जो है जब सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया है, भगवान उसका सर काट दिया गया है, जो कि अमृत पी चुका था, देवताओं की क्यों में देवताओं के वस्त्र पहन के बैठ चुका था। ये राहु समाप्त नहीं हुआ, उसकी भी बहुत लंबी आयु है, वो भी पूर्णिमा अमावस को जो है तंग करता है, ग्रहण लगता है, उसी का जो धड़ था वो केतु के रूप में रह गया, मस्तिष्क जो सर है वो राहु के रूप में आज भी, जिसको ग्रह का एक दिया गया स्थान दोनों को, आज भी विद्यमान है। परंतु इस सारे अमृत के अंदर बात ये निकल के आई कि अमृत का अर्थ ये, अमर का अर्थ ये नहीं है कि आप कभी समाप्त नहीं होंगे, एंड हैज टू कम, परंतु डिलेट, मतलब बहुत लंबी आयु है, इतनी लंबी आयु जैसे ब्रह्मा जी की आयु है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाता। अगर परमाणु के लेवल पे लेके जाओ ब्रह्मा जी की आयु को, अभी तो वर्षों में कैलकुलेट हो रहा है ना, तो कैलकुलेशन नहीं हो रहा। अगर आप ब्रह्मा जी की आयु को प्रभु जी आज बैठ के ना परमाणु में कैलकुलेट करना, एंड यू सी हाउ लॉन्ग इट कम्स, कितना बड़ा आता है। तो यहां चर्चा यही हो रही है कि अब अरे किस तरीके से जो है मैं उसे अमृत दूंगा। परंतु कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि मेरा पुत्र देवतुल्य हो। अगले श्लोकों में चर्चा आएगी कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती है तो उनकी प्रसन्नता छूमंतर हो गई। जो भक्ति पूर्वक पूजा करने से, सेवा करने से प्रसन्नता हुई थी, जो जिसकी प्रसन्नता के वशीभूत होकर वो वर दे रहे थे, वो प्रसन्नता जो है अगले श्लोक के परपट प्रभुपाद जी बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहती तो उनकी प्रसन्नता छू मंतर हो गई, वे इस विचार के घोर विरोधी थे। ये आप फिर करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की